मेरी महारानी श्री राधा रानी, अभी अभी श्री राधा जी के बल श्री श्याम सुंदर ने गिरिराज उठाया। राधा रानी के पास कोई बल ही ना है, वो तो सहज करुणा मई है, वहां में तो सहज ही बल हो, बाकी कृपा से सब कुछ काम हो। कैसी कृपा है, अधमन की खरीदार हमारी प्यारी राधे राधे,
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 रसिकन की रिजवार हमारी प्यारी राधे राधे,
रसिकन की रिजवार हमारी प्यारी राधे,
बहलियों नंद कुमार हमारी प्यारी राधे राधे,
बहलियों नंद कुमार हमारी प्यारी राधे राधे,
राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे
राधे।
बहुत अच्छा।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिह्वा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोषि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं स्थिते। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन। तत्पश्चात त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवीगण उपस्थित सज्जन यथा सब योग्य सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी ने दशम स्कंध और विशेष करके आज के प्रसंग में कैसे राष्ट्र संपन्न हुआ, कृष्ण ने बंसी बजाई और सभी गोपियां अपने को सोच रही हैं ये हमारा ही नाम ले रहे हैं, पुकार रहे हैं बंसी से, और सभी अजगु अन्नो अन्न मलक्षितम धन सभी अकेले ही निकली और सोच रहे कि हम अकेले जा रहे हैं अलक्षित रूप में, किंतु वहां तो करोड़ों करोड़ों गोपियां। इन्होंने बताया जे कैसे जो खाना भोजन बना रही थी, जो पतियों की सेवा कर रही थी, जो अपने आभूषण से अपने को आभूषित कर रही थी, सभी वो पूरा न होने के पहले ही आकर्षित होकर के चल गए। कोई कोई जो घर से निकल नहीं पाई और उनको उनका पतियों ने बंद कर दिया, नहीं जाने देंगे, तो अत्यंत विरह से उनका जितना ताप था और सभी कुछ नष्ट हो गया और अपने आंखों से भीतर से अपने हृदय में लेकर के उनका आलिंगन किया, शुभ अशुभ सब कुछ दूर हो गया, मिलन में जो बाधा थी वो दूर हो गई और वो पहले ही आकर के उनसे मिल गई। शरीर का पतन नहीं हुआ क्योंकि राश है ना, राश में शरीर पतन होने से विघ्न हो गया, इसलिए वो लोग भी मिल गई। किसी किसी का कहना है कि वो शरीर को त्याग दिया, शरीर नहीं त्यागा, और उनसे आकृष्ट हुई। ये बात पीछे प्रकट हुई, इस सब का इन्होंने वर्णन किया है। कभी कभी जो गोपियां वाम्य स्वभाव वाली हैं, कभी कभी दक्षिण स्वभाव की हो जाती है और ऐसी बातें करती हैं जो हमारे तप्त सिर पर हाथ रख दीजिए, स्तनों पर हाथ रख दीजिए और तरह तरह की ऐसे बातें करती हैं, तो कृष्ण उसको सह नहीं सकते, इसलिए अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं उनको वाम्य भाव में लाने के लिए। कृष्ण को कोई अपनी चेष्टा से वशीभूत नहीं कर सकता। भक्ति ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमने कहा अन्नाभिलाषिता शून्य, किसी प्रकार की कोई भी अभिलाषा संसारिक उसमें नहीं है, यहां तक कि मुक्ति तक की इच्छा नहीं है। वो द्वारकापुर की महिषियों से गोपियों का कुछ वैशिष्ट है। कभी कभी उनकी काम की प्रधानता होती है, उसमें सेवा कुछ विच्छिन्न हो जाती है, इसलिए कृष्ण को वशीभूत नहीं कर पाती। और गोपियों का काम और सेवा दोनों मिल जाता है, प्रेम एक हो जाता है, इसलिए कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर लेती है। पृथक रूप में कोई उनकी लालसा नहीं गोपियों की, उनकी पृथक रूप में कभी कभी हो जाती है और उस स्थिति में कृष्ण को वशीभूत करना बड़ा कठिन होता है। ये सब वर्णन इसलिए करें कि हमारी भक्ति भी क्रमशः बढ़ते बढ़ते इसी तरह की हो तो ब्रजेश नंदन जो कृष्ण है उनको हम पा सकते, अन्यथा नहीं पा सकते। कोई कोई कीर्तन करते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, हम इसके पक्षपाती नहीं है, इसके पक्षपाती हम तो कहते हैं जे श्याम श्याम श्यामा मिला दे, उनकी सेवा करने से प्रेम उनके अंदर में है और उसमें श्याम को मिला दे मतलब कुछ काम है पृथक रूप में, इसलिए हम लोग उसके पक्षपाती नहीं। तो इस सब का वर्णन किया कि प्रकार से कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर कुछ समय के लिए ही गोपियां बिल बिलाने लगी और अंत में जमुना के उपवन में निकट आकर जमुनापुरी में सभी मिलकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, उसी का नाम है गोपी गीत। उनका रोना और गाना अलग नहीं, हमने भी देखा है कभी कभी घर में स्त्रियां जब रोने लगती हैं किसी विरह में भी तो बड़े राग से आलाप करते हुए कीर्तन करते हुए रोती हैं। ये रो रही हैं कि कीर्तन कर रही है समझ में नहीं आता। तो ये गोपियां विरह में हैं और वो कीर्तन कर रही हैं। कृष्ण उनके प्रार्थना से फिर रुक नहीं सके, बाध्य होकर के उनको लौटना पड़ा। उसी का नाम श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने गोपी गीत कहा है।
जरा वो बोलो तो उस स्वर से जय किसे अधिक
जयति तेधिका जन्मना प्रजा Thank you.
जन्मना प्रजा गोप्या पूछू गोपिया कहने लगी। गोपियां केवल एक ही भाव वाली नहीं है, तरह तरह की भाव वाली है। कोई दाक्षिण्य है, कोई वाम्य है, कोई तटस्थ है, कोई कुछ है, अपने अपने भावों के अनुसार में कह रही। विशेष विशेष अलग अलग भी उसमें भाव है। कोई उलाहना के स्वर में बोल रही, कोई प्रार्थना के रूप में बोल रही, कोई कुछ रूप में बोल रही है। तजायति ते अधिकम जन्मना प्रजा। वृंदावन स्वर्ग से भी ऊंचा, बैकुंठ से भी ऊंचा, द्वारका मथुरा से भी बहुत ऊंचा। विशेष करके एक गोलोक वृंदावन धाम है और एक भौम वृंदावन है। भौम वृंदावन जहां पर गोलोक से यहां पर उतरते हैं, कोई भेद नहीं है, थोड़ा सा कुछ वैशिष्ट्य है। वहां जो लीलाएं किसी अन्य रूप में है, यहां कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखती। लीलाएं दोनों ही शुद्ध हैं, किंतु इस जगत में जो भौम लीला होती है उसमें अधिकारी जो देखते हैं, यदि उनका चित्त शुद्ध है तो शुद्ध रूप में देखेंगे, नहीं तो अशुद्ध रूप में देखेंगे। इसीलिए कुछ लोग हैं मथुरा में भी देखते हैं और सब जगहों में भी, कृष्ण का भागवतीय चरित्र नहीं लेते, जिसमें राश इत्यादि का वर्णन है, चीर हरण चीर चीर घाट का जो लीला है, वस्त्र हरण, ये सब की लीलाएं हैं, उसको वो नहीं ग्रहण। बस गीता के कृष्ण को, महाभारत के कृष्ण को आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, शुद्ध गुरुकरण नहीं किया, सुनते नहीं है। विशेष करके तो राधा नाम तो सुन ही नहीं सकते, गोपियों का नाम भी नहीं सुन सकते। तो जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, कृष्ण के जन्म से ये भवन वृंदावन भी आज स्वर्ग और स्वर्ग से भी बढ़कर के बैकुंठ और मथुरा द्वारका इत्यादि भूमियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, जहां पर इंदिरा सस्वदत्त आज वृंदावन में, भौम वृंदावन में इंदिरा महालक्ष्मी सेवा कर रही है। इसने बताया झाड़ू दे रही है, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, तो दे रही होंगी। वृंदावन धाम ही ऐसा है, वृंदावन को स्वच्छ सुथरा बनाना, फल फूलों से लाभ देना, और कृष्ण आ रहे हैं उनके लिए स्वागत में ये सब वृंदावन को ऐसा सजा रही है। विशेष करके रास होगा, रासस्थली भी कैसे, यमुना पुलिन भी कैसे होगा, ये सब को वृंदावन ये सजाती है इंदिरा जी। इसका नाम ही है ब्रज वृंदा वृंदावन। एक कृष्ण की शक्ति है वो पूर्णिमा जोगमाया, कृष्ण की अखिल लीलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी भी उनकी लीलाएं होती हैं सबकी अधिष्ठात्री देवी पूर्णिमा पूर्ण रूप में है, और वही पूर्णिमा देवी ही जब अपने आंशिक रूप से वृंदावन और वृंदावन की निकुंज लीलाओं की अधिष्ठात्री होती है तो वो वृंदा है, वो अपने आप सजा, उसको सजाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। हमने शरद ऋतु के वर्णन में कुछ कुछ मैंने सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आप लोगों को सुनाया था, दैत्य दृश्यतां दिच्छतावक दैधिता सव
स्वांग विचरिंगते। ओहो, तू हमें छोड़ करके चले गए, हम लोगों ने तो आप तुम्हारे लिए कुलकानी कुल कुल कुलकानी और जितनी रीति नीति सब कुछ पति माता पिता सबका त्याग करके तुम्हारे चरणों में आई और तुम हमें छोड़कर विदर्भी निष्ठुर की भांति चले गए। दैत्य दृश्यता, हे प्रिय अब तो दर्शन दो। इसी तरह से तरह तरह से कृष्ण को उलाना भी दे रही है, उसमें से हम दो एक श्लोक का वर्णन करेंगे, सब संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएंगे। उसमें कहे तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, नखलु गोपिका तुम नहीं हो शायद, क्यों यशोदा जैसे दयालु तो नहीं हो, यशोदा मैया शरणागत को छोड़कर इस प्रकार से तो चली नहीं जाएंगी, और यदि तुम उनके पुत्र हो तो इस प्रकार से हम लोगों को इस अवस्था में असहाय अवस्था में जबकि रात के समय में कोई हमें देखने वाला नहीं और हमें छोड़ करके तुम चले गए निष्ठुर होकर नहीं हो। हाँ, हमने पूर्णिमा जी से सुना है शायद अखिल देह ही नाम अंतरात्म, अखिल प्राणियों के हृदय में रमने वाले तुम अंतर्यामी हो, आत्मा को दर्शन करने वाले हो। विखन सार्थी तो ब्रह्मा की प्रार्थना से संसार की रक्षा करने के लिए धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए सख उदीयमान शाश्वत शाश्वत कुल में इस विश्री कुल में तुमने जन्म ग्रहण किया है। दृढ़चता विष्णु भूर्यते चरणमीषां संसते भया कर्षरोरुहं कांत कामदं शिरस्ते न प्रार्थना करने लगी। यहां पर दक्षिण भाव से प्रणत देहिना पाप कर्षण, जब उन्होंने कहा भजसके भवत किंकरोन स्मनम स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय, तो कृष्ण कहते हैं मानो देखो तुम्हारे सिर पर हाथ रखना, अपने चरण कमलों को तुम्हारे मस्तक पर रखना धर्म विरुद्ध में नहीं कर सकता, इसमें पाप हमें लगेगा ऐसा करना। हमारे शास्त्रों में से पाप बतलाया गया है परिस्त्रियों से, तो वो कहती हैं प्रणत देहिनां पाप कर्षण, आपको भला पाप जिसके नाम लेने से ही जगत के समस्त पाप भूत भविष्यत वर्तमान के पाप दूर हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम जयति जयति ते नाम है ना उनका जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे ब्रह्मते निज धर्म ध्यान पूजादि जतनम कथमपि सकृदातम मुक्तिदं प्राणिनां यत् परमामृतमेकं जीवनम भूषण। नाम संकीर्तनम जस सब पाप प्रणाशनम, सब पापों को दूर करने वाला है, ऐसे जो हरि परम है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो भला कृष्ण को पाप लग जाए, जिसको तो नाम ही दूर कर देता है। प्रणत देहि नम गोपियां उत्तर कर रही है प्रणत देह जो भगवान के प्रणत हैं, बार बार उनकी उनकी प्रतिज्ञा है सर्वधर्मान् प्रत्यज्यमामेकं शरणं, बार बार उनकी प्रार्थना है प्रतिज्ञा है उनके पाप को दूर कर जाता हूं और कृष्ण को पाप स्पर्श करेगा। तृणचरानुगम लिंक बंधा हुआ है ऐसे नहीं मालूम होगा। व्याख्याओं से जो कि हमारे गोस्वामियों ने व्याख्या की है, हम समझते हैं कि कम से कम तो 100-200 इसकी टीकाएं होंगी और इसमें प्रधान प्रधान लोगों की टीकाएं हैं जिसमें सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बड़ी रसमयी टीकाएं हैं। मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कुछ लेकर के ये बतला रहा हूं। पाप कर्षणम तृणचारानुगम, तीर्ण को चराने चरने वाली गायें उनके अनुग, जहां जहां गायें जाती हैं और वहां वहां कृष्ण भी जाते हैं, हमारे कहने से प्रार्थना से प्रार्थना तो पूरा नहीं करेंगे, किंतु जो निर्बोध जो गायें हैं उनके अनुग होकर के चल रहे हो। दूसरी बात तृणचारा अनुगम, हमारे वस्तक्षल पर अपने सुकोमल चरणों को नहीं रख सकते क्योंकि कृष्ण का चरण सुकोमल है, कहते हैं ये बहुत सुकोमल। गायों के पीछे पीछे चलते हैं, गायें क्या हरी भरी घास पर ही चलती हैं? नहीं, वो कभी कभी पहाड़ों के ऊपर में, पर्वतों के ऊपर में, कांटों के ऊपर में खूब तो उनके होते हैं, उनको तो कुछ लगते नहीं है। यहां पर कांटे हैं वहां उधर भी दौड़ती हैं और गोवर्धन की कंदराओं में ऊपर नीचे इधर उधर पर्वत के नुकीले पत्थर लगते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है और कठोर हम लोगों का ये हृदय स्थल तुमको मालूम पड़ता है। श्री निकेतनम, श्री निकेतनम गोपिया कह रही हैं आपके चरण कैसे हैं? श्री निकेतन, श्री जी के आश्रय हैं। किस लिए आश्रय? आप लोग जानते हैं महापति प्रदास शिरोमणि हैं, कौन अनुसुईया देवी, चित्रकूट में उनका स्थान है, अत्रि ऋषि की पत्नी है। एक समय लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती ब्रह्मा की स्त्री तीनों एक जगह वार्तालाप कर रही कि जे हम लोगों को पतिव्रता में कोई रखता ही नहीं, नाम ही नहीं लेता, सभी लोग अनुसुईया जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो उनकी पतिव्रता को नष्ट करने की कोई योजना बनाई जाए। और सब लोगों ने निस्तर किया कि अपने पतियों को कहेंगे ये परीक्षा उनकी लो और परीक्षा में असफल हो, इसलिए जब ब्रह्मा शंकर जी और उनके यहां गई अपनी उनकी पत्नियां और उनसे प्रार्थना की जो उनकी परीक्षा ली जाए उसमें वो अवश्य ही पतित हो जाए तब हम लोगों का नाम आएगा, उन लोगों ने ऐसा मत करो, उन लोगों ने उत्तर दिया ऐसा मत करो कहीं विपत्ति में ना फंस जाए, किंतु उन्होंने जिद जो पकड़ा वो छोड़ा नहीं, नहीं इसको पूर्ण करना ही होगा। तो उनके कहने से वो लोग चित्रकूट में पहुंचे, जब पहुंचे भिक्षांग देही भिक्षा मांगा, फल मूल जो कुछ था वो कुछ ले आई और उनको देने लगे, ऐसे नहीं लेंगे, नंगी होकर के दो। तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखा जैसे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं तीनों, अपने पति के पास में गई, जैसे ऐसी बात है मैं क्या करूं, तुम उनको भिक्षा दो, वो साधारण नहीं है, जैसा कहता है वैसे बच। तो उन्होंने वो आश्रम में लौट आई और उनसे बोली ठीक है मैं नंगी होकर के तुम्हें भिक्षा दूंगी, तो तुम अभी जात पुत्र जैसे अभी जब उत्पन्न हो जाते हैं अभी छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे होकर के हमारी गोदी में आ जाओ नंगे होकर के, और मैं नंगी होकर के तुमको दूध पिलाऊंगी। एकदम वो जैसे दो एक दिन के बच्चे हो गए और गोदी में उठा लिया और नंगी होकर के उनको दूध पिलाया, भैया अब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इसी रूप में रहो, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में नहीं, उसी रूप में रख दिया। इधर में अब तीनों सोच रहे हैं जो गए हमारे पति लोग गए कहां और लौटे ही नहीं, नारद जी ने बतलाया वो गए थे और फंस गए हैं दलदल में, अब वो फंस निकलना बड़ा भारी मुश्किल है, तो हम क्या करें। तो एक बात करो तुम भी जाओ उनकी पुत्र वधु होकर के उनसे प्रार्थना करो और फिर मांग करके ले आओ। तीनों ने भी विलंब नहीं किया और ब्राह्मणी सजकर वृद्ध ब्राह्मणी सज गई और उनके यहां गई और वो भिक्षा मांगने लगी। ये क्या भिक्षा चाहिए? तो हमारे ये तीनों जो पति हैं हमारे, हम तुम्हारी बहुएं हैं, आप कृपा करके बहुओं की इच्छा की पूर्ण करिए, इनको हमको लौटा दें। तो दया से भर गई और एक एक स्वरूप उनको लौटाया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और वो जो लड़के जो तीन थे तीन स्वरूपों में तीनों को रख लिया। तो वो हुए ब्रह्मा हुए चंद्रमा और दुर्वासा जी हैं शंकर और दत्तात्रेय विष्णु, इन तीनों को अपने पास में रख लिया और उसी प्रकार से वो चलने लगे। अब श्री जी को लक्ष्मी जी को डर बना रहता जो कभी फिर उनके चक्कर में ना पड़ जाए, इसलिए और वो विष्णु के चरणों को सब समय पलोटती रहती हैं जो कभी भी ऐसा मौका न मिले जो हम ऐसा कहें और न उनके पास में जाएं। इसलिए श्री निकेतनम फणि फणार्पितम, कृष्ण के जैसा भी हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे हृदय में पाप निकल रहा काम का ताप, उसे हमारा हृदय में हमारा पैर जल जाएगा, तो फण फणार्पितम काली के फण पर अपना अपना पैर रख सकते हैं विषधर, और उसमें कूद सकते हैं जमुना ह्रद में, और हमारा हृदय तो देख ही रहे हैं कितना कोमल शांत, इस पर अपने चरण नहीं रख सकते। किणे कुचे सुना क्रिंद हिंद, हमारे जो ताप है इस ताप को दूर कीजिए, अपने चरण कमलों को हमारे वस्त्रक्षल पर धारण करें। तब कथा अमृतम, ठीक है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी रीड़ितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणंति ते भूरिदाज। लो एक कीर्तन करो उसको कहो तो तमाल, वही कीर्तन करो, एक बंगला कीर्तन करेंगे। जा रहे हैं, अच्छा
Oh, Oh,
तब कथा अमृतम।
जो जीवन में अनुतप्त हो गए हैं, सर्वत्र उनको दुखी मिल रहा, जीवन दुभर हो गया है, आपकी कथाएं उनके लिए अमृत। बात ठीक है। यदि कोई दुख में जाए, बड़े कष्ट से, अब कष्ट नहीं सह सकता, द्रौपदी पर उसका नंग कर देने के लिए दुशासन चीर खींच रहा है, दुर्योधन की गोदी में बैठा देगा नंगी करके, और उस समय उन्होंने क्या किया, जब भगवान का नाम पुकारा, वस्त्र बन करके आ गए उनकी लज्जा को। इस प्रकार से जो कोई कष्ट में पड़े, भगवान की कथा ही अमृत है। कभी रीढ़ी तम ब्रह्माशु वाल्मीकि इत्यादि व्यास, ये भगवान की लीला के व्यास हैं, कवि लोग हैं, अप्राकृत कवि लोग, इसका सर्वत्र वर्णन करते हैं भगवान की कथाओं का। श्रीमद् भागवत में भी बतलाया गया, वो क्या है, श्रीमद् भगवान के कथाओं में जिनका प्रीति नहीं है, हाँ, धर्म सुनिश्चितां विश्वक्सेन कथा सुजा नो दुपात रेदिरतिं समय। जितना भी भक्ति करता हो, कोई अर्चन करता है, हरिनाम भी करते हैं और भक्ति के साधन करते हैं, किंतु भगवान की कथाओं में यदि आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ दिनों के बाद में वो सब छूट जाएगा। इसलिए भगवान की कथाओं के प्रति आदर हो। हनुमान जी जहां जहां पर रामायण की कथा होगी जरूर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे सुखदेव गोस्वामी जी भी जहां जहां हरी कथा होगी कोटि कोटि रूप धारण करके जाते हैं। हम तो सुनते हैं जो कहीं 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 पर हनुमान जी जहां पर भगवत कथा होती है वो कुष्ठ व्याधि का रूप धारण करके कुष्ठ रोगी जैसा, और वहां पर पहुंच करके सबसे पीछे बैठते हैं, किसी को पता ही नहीं लगने देते, देखते हैं इनके शरीर में कुष्ठ है, कोई निकट ही नहीं उनके पास, और बहुत दूर से हरी कथाओं को सुन करके फिर चले जाते। और यदि कोई जान लिया तो फिर मुश्किल हो जाता है। तस्मद् मंगलम् कभी रीडितम् कल्मष आपहम्, सारे प्रकार के कल्मष दूर हो जाते हैं भगवान के लिए। अजामिल ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं किया, और अपने पुत्र के लिए नारायण इधर आ नारायण 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 की, अपने पुत्र मरते समय में, और कैसे वो तर गया। इसलिए समस्त पापों को हरण करने वाला ये भगवान की कथाएं हैं। श्रवण मंगल, श्रवण करने से ही मंगल देती है हरी कथा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने 7 दिनों तक केवल हरी कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से, साधन करने का तो समय नहीं मिला, और क्या हुआ, गोलोक में गोपियों का भाव प्राप्त हुए, इतना ऊंचा स्थान। इसलिए श्रवण मंगल, हरि कथा में रुचि है तो बाकी सब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वैष्णव से भगवान की कथाएं सुने, फिर उसमें श्रद्धा होगी, रुचि होगी, धीरे 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 अनर्थ दूर हो जाएंगे, और फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव इत्यादि सब प्राप्त हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीमदाततम, जितने प्रकार के कल्याण है वो सब कल्याण इसी से ही हो जाता है, आपकी कथाओं से। भूवि गृणन्ति जे भूवि जाति, ऐसे भगवान की कथाओं को जो जगत के कल्याण के लिए कथा कहते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। उनके समान और कोई दानी नहीं है जो भगवान की कथाओं का दान करते हैं, वो भी निःशुल्क जो करते हैं। किसी प्रकार का ये नहीं कि हमको 1,00,000 रुपया चाहिए तब हम जाएंगे। बहुत से लोग आजकल पाठक हैं जो पहले चुक्ति कर लेते हैं। ऐसे भागवत से दूर रहना चाहिए, ऐसा भागवत मत करो जो इतना रुपया देना पड़ेगा तो हम जाएंगे, जो कि जी के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। और कुछ जो बामे भावाली गोपियां हैं, इसका अर्थ दूसरा लगाती हैं, वो दूसरे रूप में इसका इसको गान कर रही, तब कथा मृतम, आपकी कथा मृत्यु है, मारने वाली विष है। कैसे विष है? तो हम लोग उपलब्धि कर रहे हैं, हमारे घर बार सबको छुड़ा दिया, रास्ते का फकीर बना दिया, हम न घर की रही न घाट की रही, तो कथा मृतम, ठीक है ना, इधर भी नहीं रखा उधर भी नहीं। कुछ ऐसे ही वैष्णव और गुरु बनने वाले हैं जो अपने भक्तों को इधर का भी नहीं रखते उधर का भी नहीं रखते। तो कहो कथा मृतम तप्त जीवन, जीवन को तप्त कर देती हैं आपकी कथाएं। यदि सुना तो स्त्री यदि सुनी तो पति और सबके प्रति संसार के प्रति आसक्ति दूर हुई मीरा की भांति, और छोड़ करके दोनों हाथ उठा करके वृंदावन में चले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर तप्त जीवन हो जाता है। कभी ऋणितम, ये जो कथाओं का जो महात्म बतलाया गया है, जो ऐसा फल होता है, वो सब झूठा गोपियां कह रही हैं, उस बाम्बे भाव वाली सब झूठा। कभी ऋणितम, कवियों की कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। ये घोड़ा आसमान में उड़ रहा है, कभी लोग लिखेंगे। अरे घोड़े आसमान में उड़ते हैं, आकाश में फूल खिले हैं, आकाश में कभी पुष्प खिलता है, तो ये कोरी कल्पना है, ये लोगों ने लिख दिया है, लिख मारा है शास्त्रों में। क्यों? हम अनुभव करके देख रहे हैं। आज हमारा जीवन कितना दुखमय हो गया है, यदि दुख हो यदि दूर हो जाता है इनकी कथाओं से, इनकी कथाएं तो हम कह रही हैं, और इतना विरह क्यों सता रहा, आज हम दुखी क्यों हैं? कल मशाप, हम कथाओं से भी पाप दूर नहीं होते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ रहा है। श्रवण मंगल, बस उन कथाओं में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा कल्याण होगा, बस वही शब्द मात्र है, उसका कोई फल नहीं। कहां हमको भी मिल रहे, कहां रहे हो, हम दुख में उत्तप्त हो रही हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदा, जितने प्रकार के शुभ हैं वो सबको आततम नष्ट करने वाली, काटने वाली तुम्हारी कथाएं हैं ऐसी। कोई किसी को शुभ नहीं होगा, घर बार छोड़ करके किसी को पुत्र को ऐसा होगा, भगवान की कथा सुनेंगे तो सबको छोड़ छाड़ करके वृंदावन में पहुंच जाएगा, पक्षी की भांति इधर उधर कहीं से माधुकरी मांगेगा और हा कृष्ण रोएगा, घर वालों को भी रुलाएगा। ऐसी ही कथाएं हैं। भूल गृणंत ते भूल दारिना, उन लोगों से सावधान रहना जो तिलक लगा करके कंठी माला पहनते हैं और बगल में एक पोथी भागवत जी इसका नाम है उसको दबा करके चलते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, हमारी कथा केवल सुनो, उनसे बचे रहो, उनकी कथा मत सुनो, नहीं तो तुम्हारा भी संसार ऐसे ही हो जाएगा जैसे आज हम दुखी हैं, बिलबिला रही हैं ऐसे। उसी तरह से इसके एक एक श्लोक के कितने कितने भाव, कितने कितनी गोपियां इस सब का वर्णन कर रही हैं। चलती जात चलत जद ब्रजात चार जन पर, चलत जद ब्रजात चार जन पशु ननी न सुंदरम नाथ ते पदम शिणतुर
गुरई सी जते ते ना
हे कृष्ण, कृष्ण तो नहीं कहते, हे नाथ कह रहे हैं, चलत जत प्रजा। जब ब्रज से आप निकलते हो पशुओं को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में, नलिन सुंदरम नाथ ते पद, आपके सुंदर जो चरण कमल हैं, कोमल से कोमल, मधुर से मधुर, क्या उसमें पत्थर के टुकड़े, तीर, कांटे, कूश नहीं लगते? सिद्धि तीति न कली लतांग मन कांत बच्चे। हमारे मन में ऐसा होता है कि जरूर चुभते होंगे, गाय इधर उधर दौड़ती है, उनकी रक्षा करने के लिए आप जाते हैं तो जरूर ये सब चुभते होंगे। आज हमारे मन में कली लतांग, कली माने विवाद उपस्थित हो जाता है, क्या गोपियों से और उनके मन से विवाद होता है। मन कहता है वो तीन चरने वाली जो गाय उनके पीछे पीछे जंगलों में जाते हैं तो वो चुभते क्या नहीं होंगे? नहीं चुभते होंगे। क्या उनकी आंखें नहीं है जो देख करके चलेंगे? इधर गोपिया कहते हैं ऐसे, आंख तो है किंतु गायें तो इधर उधर जाती हैं और उनके पीछे भागते हैं तो जरूर पत्थर के टुकड़े, कांट, कूश इत्यादि उनके पैरों में जरूर चुभते होंगे। तो चुभते हैं तो क्यों जाते हैं? मन कहता है, कहते हैं जैसे जब गाय नहीं जाती तो फिर ये क्यों जाते? इस तरह से विवाद लगता है मन में, बहुत सा इसका वर्णन है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से मन ही मन में वो सोचते हैं जे कृष्ण को कितना कष्ट हो रहा है। इसी तरह से ये सभी श्लोक ऐसे ही हैं, समय भी साथ हो गया, एक श्लोक कह करके फिर बंद करेंगे। यत्ते सुजात चरणाम्बरु हम तने सुभीतास नहि प्रिय ददी महि कर्कशेष ते नाम अटविस अटसि तद व्यथते न किंचित कृपादि भी भ्रमत धीर भव जाति यत्ते सुजात। इस प्रकार से गोपियां प्रार्थना करने लगी, जिन चरणों को, सुकोमल चरणों को हम लोग हृदय में धारण करना चाहती हैं, और वो भी डर के मारे, डरते डरते वो हमारे वस्तक्षल कठिन है, कृष्ण के चरण अत्यंत कोमल हैं, बड़ी विचार सोच करके हम उसको रखती हैं और उसी पैर से, कोमल चरणों से आप वन जंगल में चलते हैं, आपको कष्ट नहीं होता होगा, इसलिए आप जल्दी से, हाँ उन्हीं जैसे हो गए हो, ये भी ठीक, इसलिए जल्दी से प्रकट होइए, अब इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से रोने लगी और कृष्ण उनकी रोदन को सुनकर, इति गोप्य प्रगायंत्य प्रलपतंश चित्रधा रुरुदुस्वसरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभुहृत सौरी। सौरी माने सूर से आए कठोर हृदय वाले, लज्जित होते हुए उनकी माला गले में है और उनके पीताम्बर भी बड़े नम्र होकर के, कुछ लज्जित होते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, और आविर्भूत सौरी पीताम्बर दर्शक भी साक्षात मन 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 मथा वो उनके सामने उपस्थित हो गए। इस प्रकार से ये गोपियों का कृष्ण के विरह में एक मार्मिक प्रसंग है जो भागवत में लिखा गया है। अभी कृष्णदास एक कीर्तन कर दो तो तुम लोग का नित्य होगा।
बांध है, कोई तटस्थ है, कोई कुछ है,
अपने अपने भावों के अनुसार में करें। विशेष विशेष अलग अलग भी उसमें भाव है। कोई उलाहना के स्वर में बोल रही, कोई प्रार्थना के रूप में बोल रही, कोई कुछ रूप में बोल रही है।
तो जायति ते अधिकम जन्म ना प्रजा,
वृंदावन स्वर्ग से भी ऊंचा, बैकुंठ से भी ऊंचा, द्वारका मथुरा से भी बहुत ऊंचा। विशेष करके एक गोलोक वृंदावन धाम है और एक भौम वृंदावन है। भौम वृंदावन जहां पर गोलोक से यहां पर उतरते हैं, कोई भेद नहीं है, थोड़ा सा कुछ वैशिष्ट है। वहां जो लीलाएं किसी अन्य रूप में है, यहां कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखती है। लीलाएं दोनों ही शुद्ध हैं, किंतु इस जगत में जो भौम लीला होती है उसमें अधिकारी जो देखते हैं, यदि उनका चित्त शुद्ध है तो शुद्ध रूप में देखेंगे, नहीं तो अशुद्ध रूप में देखेंगे। इसीलिए कुछ लोग हैं मथुरा में भी देखते हैं और सब जगहों में भी, कृष्ण का भागवतीय चरित्र नहीं लेते, जिसमें रास इत्यादि का वर्णन है, चीर घाट का जो लीला है, वस्त्र हरण, ये सब की लीलाएं हैं, उसको वो नहीं ग्रहण करते। बस गीता के कृष्ण को, महाभारत के कृष्ण को आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, शुद्ध गुरुकरण नहीं किया, सुनते नहीं हैं। विशेष करके तो राधा नाम तो सुन ही नहीं सकते, गोपियों का नाम भी नहीं सुन सकते। तो जयति तेधिकम जन्मना ब्रजन, कृष्ण के जन्म से ये भवन वृंदावन भी आज स्वर्ग और स्वर्ग से भी बढ़कर के बैकुंठ और मथुरा द्वारका इत्यादि भूमियों से भी अधिक श्रेष्ठ है। जहां पर इंदिरा सस्वदत्त रही, आज वृंदावन में, भवन वृंदावन में इंदिरा महालक्ष्मी सेवा कर रही, इसने बताया झाड़ू दे रही है, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, तो दे ही रही होंगी। वृंदावन धाम ही ऐसा, वृंदावन को स्वच्छ सुथरा बनाना, फल फूलों से लाभ देना, और कृष्ण आ रहे हैं उनके लिए स्वागत में, ये सब वृंदावन को ऐसा सजा रही है। विशेष करके रास होगा, राष्ट्रस्थली भी कैसे, जमुना पुलिन भी कैसे होगा, ये सबको वृंदावन ये सजाती हैं इंदिरा जी। इसका नाम ही है ब्रज वृंदा वृंदावन। एक कृष्ण की शक्ति है वो पूर्णिमा जोग माया, कृष्ण की अखिल लीलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, जितनी भी उनकी लीलाएं होती हैं सबकी अधिष्ठात्री देवी पूर्णिमा पूर्ण रूप में है। और वही पूर्णिमा देवी ही जब अपने आंशिक रूप से वृंदावन और वृंदावन की निकुंज लीलाओं की अधिष्ठात्री होती है तो वो वृंदा है, वो अपने आप सजा होता है, उसको सजाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। हमने शरद ऋतु के वर्णन में कुछ कुछ मैंने सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आप लोगों को सुनाया था, दैत्य दृश्यतां दिच्छतावक दैधिता सव पान विचिन्वते, ओहो तुम हमें छोड़ करके चले गए, हम लोगों ने तो आप तुम्हारे लिए कुलकानी कुल कुल कुलकानी और जितनी रीति नीति सब कुछ पति माता पिता सबका त्याग करके तुम्हारे चरणों में आई और तुम हमें छोड़कर विदग्ध निष्ठुर की भांति चले गए। दैत्य दृश्यता, हे प्रिय अब तो दर्शन दो। इसी तरह से तरह तरह से कृष्ण को उलाहना भी दे रही है। उसमें से हम दो एक श्लोक का वर्णन करेंगे, सब संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएंगे। उसमें कहे तुम जो सोदा के पुत्र नहीं हो, नखलु गोपिका, तुम नहीं हो शायद। क्यों? जसोदा जैसे दयालु तो नहीं हो, जसोदा मैया शरणागत को छोड़कर इस प्रकार से तो चली नहीं जाएंगी, और यदि तुम उनके पुत्र हो तो इस प्रकार से हम लोगों को इस अवस्था में, असहाय अवस्था में, जबकि रात के समय में कोई हमें देखने वाला नहीं और हमें छोड़ करके तुम चले गए निष्ठुर होकर, नहीं हो। हाँ, हमने पूर्णिमा जी से सुना है शायद, अखिल देह नाम अंतरात्म, अखिल प्राणियों के हृदय में रमने वाले तुम अंतर्यामी हो, आत्मा को दर्शन करने वाले हो। विखन सार्थी तो ब्रह्मा की प्रार्थना से संसार की रक्षा करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए सख उदीयमान शाश्वत कुल, शाश्वत कुल में, इस विश्री कुल में तुमने जन्म ग्रहण किया है। विरचताभ्याय विष्णु धूर्यते चरणमीषाम संसते भया कर्सरोरुहम कांत कामदम शिरसते न, प्रार्थना करने लगी यहाँ पर दक्षिण भाव से। प्रणत देहिना पाप कर्षण, जब उन्होंने कहा भजसके भवत किंकरोन स्मन स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय, तो कृष्ण कहते हैं मानो देखो तुम्हारे सिर पर हाथ रखना, अपने चरण कमलों को तुम्हारे बस दक्षल पर रखना, धर्म विरुद्ध में नहीं कर सकता, इसमें पाप हमें लगेगा ऐसा करना। हमारे शास्त्रों में से पाप बतलाया गया है पर स्त्रियों से, तो वो कहती हैं प्रणत देहिनां पाप कर्षण, आपको भला पाप जिसके नाम लेने से ही जगत के समस्त पाप, भूत भविष्य वर्तमान के पाप दूर हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम जयति जयति ते नाम है ना उनका, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे ब्रह्मते निज धर्म ध्यान पूजादि जतनम कथमपि सकृदातम मुक्तिदं प्राणिनां यत् परमामृतमेकं जीवनं भूषणं। नाम संकीर्तनम जस्य, सब पाप प्रणाशनम, सब पापों को दूर करने वाला है, ऐसे जो हरि परम है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो भला कृष्ण को पाप लग जाए, जिसको तो नाम ही दूर कर देता है। प्रणत देहिनम, गोपियां उत्तर कर रही हैं, प्रणत देहिनम, जो भगवान के प्रणत हैं, बार बार उनकी उनकी प्रतिज्ञा है, सर्वधर्मान् प्रत्यज्यमामेकं शरणम्, बार बार उनकी प्रार्थना है, प्रतिज्ञा है, उनके पाप को दूर कर जाता हूं और कृष्ण को पाप स्पर्श करेगा। तृणचरा अनुगम, लिंक बंधा हुआ है, ऐसे नहीं मालूम होगा व्याख्याओं से जो कि हमारे गोस्वामियों ने व्याख्या की है। हम समझते हैं कि कम से कम तो 100-200 इसकी टीकाएं होंगी और इसमें प्रधान प्रधान लोगों की टीकाएं हैं, जिसमें सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बड़ी रसमयी टीकाएं हैं। मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कुछ लेकर के ये बतला रहा हूँ। पाप कर्षणम तृणचारानुगम, तीर्ण को चराने चरने वाली गायें उनके अनुग, जहाँ जहाँ गायें जाती हैं और वहाँ वहाँ कृष्ण भी जाते हैं, हमारे कहने से प्रार्थना से प्रार्थना तो पूर्ण नहीं करेंगे, किंतु जो निर्बोध जो गायें हैं उनके अनुग होकर के चल रहे हो। दूसरी बात तृणचारा अनुगम, हमारे वस्तक्षल पर अपने सुकोमल चरणों को नहीं रख सकते, क्योंकि कृष्ण का चरण सुकोमल है, कहते हैं ये बहुत सुकोमल है। गायों के पीछे पीछे चलते हैं, गायें क्या हरी भरी घास पर ही चलती हैं? नहीं, वो कभी कभी पहाड़ों के ऊपर में, पर्वतों के ऊपर में, कांटों के ऊपर में खूब तो उनके होते हैं, उनको तो कुछ लगते नहीं है। जहाँ पर कांटे हैं वहाँ उधर भी दौड़ती हैं, और गोवर्धन की कंदराओं में ऊपर नीचे इधर उधर पर्वत के नुकीले पत्थर लगते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है। और कठोर हम लोगों का ये हृदय स्थल तुमको मालूम पड़ता है, श्री निकेतनम नहीं, श्री निकेतनम गोपियां कह रही हैं आपके चरण कैसे हैं? श्री निकेतन, श्री जी के आश्रय हैं। किस लिए आश्रय? आप लोग जानते हैं महापति व्रता शिरोमणि हैं, कौन
अनुसुईया देवी
है,
अनुसुईया देवी,
अनुसुईया देवी चित्रकूट में उनका स्थान है, अत्रि ऋषि की पत्नी है। एक समय लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती ब्रह्मा की स्त्री तीनों एक जगह वार्तालाप कर रही कि जे हम लोगों को पतिव्रता में कोई रखता ही नहीं, नाम ही नहीं लेता, सभी लोग अनुसुईया जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो उनकी पतिव्रता को नष्ट करने की कोई योजना बनाई जाए। और सब लोगों ने निस्तर किया कि अपने पतियों को कहेंगे ये परीक्षा उनकी लो, और परीक्षा में असफल हो, इसलिए जब ब्रह्मा शंकर जी और उनके यहाँ गई अपनी उनकी पत्नियाँ और उनसे प्रार्थना की जो उनकी परीक्षा ली जाए, उसमें वो अवश्य ही पतित हो जाए, तब हम लोगों का नाम आएगा। उन लोगों ने ऐसा मत करो, उन लोगों ने उत्तर दिया ऐसा मत करो, कहीं विपत्ति में न फंस जाए। किंतु उन्होंने जिद जो पकड़ा वो छोड़ा नहीं, नहीं इसको पूर्ण करना ही होगा। तो उनके कहने से वो लोग चित्रकूट में पहुंचे, जब पहुंचे भिक्षांग देही भिक्षा मांगा, फल मूल जो कुछ था वो कुछ ले आई और उनको देने लगे, दया ऐसे नहीं लेंगे, नंगी होकर के दो। तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखा जैसे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है तीनों, अपने पति के पास में गई, उन्हें कि जैसे ऐसी बात है मैं क्या करूं, तुम उनको भिक्षा दो, वो साधारण नहीं है, जैसा कहता है वैसे बच। तो उन्होंने वो आश्रम में लौट आई और उनसे बोली, ठीक है मैं नंगी होकर के तुम्हें भिक्षा दूंगी, तो तुम अभी जात पुत्र जैसे अभी जब उत्पन्न हो जाते हैं अभी छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे होकर के हमारी गोदी में आ जाओ नंगे होकर के, और मैं नंगी होकर के तुमको दूध पिलाऊंगी। एकदम वो जैसे दो एक दिन के बच्चे हो गए और गोदी में उठा लिया और नंगी होकर के उनको दूध पिलाया, भैया अब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इसी रूप में रहो, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में नहीं, उसी रूप में रख दिया। इधर में अब तीनों सोच रहे हैं जो गए हमारे पति लोग गए कहाँ और लौटे ही नहीं। नारद जी ने बतलाया जी वो गए थे और फंस गए हैं दलदल में, अब वो फंस निकलना बड़ा भारी मुश्किल है, तो हम क्या करें। तो एक बात करो तुम भी जाओ उनकी पुत्र वधू होकर के उनसे प्रार्थना करो और फिर मांग करके ले आओ। तीनों ने भी विलंब नहीं किया और ब्राह्मणी सजकर वृद्ध ब्राह्मणी सज गई और उनके यहां गई और वो भिक्षा मांगने लगी। ये क्या भिक्षा चाहिए। तो हमारे ये तीनों जो पति हैं हमारे, हम तुम्हारी बहुएं हैं, आप कृपा करके बहुओं की इच्छा की पूर्ण करिए, इनको हमको लौटा दें। तो दया से भर गई और एक एक स्वरूप उनको लौटाया, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और वो जो लड़के जो तीन थे तीन स्वरूपों में तीनों को रख लिया। तो वो हुए ब्रह्मा, हुए चंद्रमा और दुर्वासा जी हैं शंकर और दत्तात्रेय विष्णु, इन तीनों को अपने पास में रख लिया और उसी प्रकार से वो चलने लगे। अब श्री जी को लक्ष्मी जी को डर बना रहता जो कभी फिर उनके चक्कर में न पड़ जाए, इसलिए अब वो विष्णु के चरणों को सब समय पलटती रहती हैं जो कभी भी ऐसा मौका न मिले जो हम ऐसा कहें और न उनके पास में जाए। इसलिए श्री निकेतनम फणि फणार्पितम, कृष्ण के जैसा भी हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे हृदय में ताप निकल रहा काम का ताप, उसे हमारा हृदय में हमारा पैर जल जाएगा, तो फण फण अर्पितम कालीय के फण पर अपना अपना पैर रख सकते हैं विषधर और उसमें कूद सकते हैं जमुना ह्रद में, और हमारा हृदय तो देख ही रहे हैं कितना कोमल शांत, इस पर अपने चरण नहीं रख सकते। खिणे कुचे सुना क्रिंद हिंद, हमारे जो ताप है इस ताप को दूर कीजिए, अपने चरण कमलों को हमारे वस्त्रक्षल पर धारण करें। तब कथा अमृतम, ठीक है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी रीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदाज। लो एक कीर्तन करो उसको कहो तो तमाल, वही कीर्तन करो, एक बंगला कीर्तन करेंगे। जा रहे हैं,
अच्छा की जय, जय जय श्री राधे। जमुना बोलिने कदम्ब कणने की हे दिनों सोखिया
Oh, Thank you.
कुछ गोपियां कह रही हैं, तब कथा अमृतम।
जो जीवन में अनुतप्त हो गए हैं, सर्वत्र उनको दुख ही मिल रहा, जीवन दुभर हो गया है, आपकी कथाएं उनके लिए अमृत।
बात ठीक है।
यदि कोई दुख में जाए, बड़े कष्ट से, अब कष्ट नहीं सह सकता, द्रौपदी पर उसका नंग कर देने के लिए दुशासन चीर खींच रहा है, दुर्योधन की गोदी में बैठा देगा नंगी करके, और उस समय उन्होंने क्या किया, जब भगवान का नाम पुकारा, वस्त्र बन करके आ गए उनकी लज्जा को।
इस प्रकार से जो कोई कष्ट में पड़े, भगवान की कथा ही अमृत है।
कब्य रीड़ी तम ब्रह्माशु वाल्मीकि इत्यादि व्यास, ये भगवान के लीला के व्यास हैं, कवि लोग हैं, अप्राकृत कवि लोग, इसका सर्वत्र वर्णन करते हैं भगवान की कथाओं का। श्रीमद्भागवत में भी बतलाया गया, वो क्या है,
भगवान के कथाओं में जिनका प्रीति नहीं है,
हाँ, धर्म सुनिश्चितां विश्वक्सेन कथा सुजा नो दुपात रेदिरतिं समय।
जितना भी भक्ति करता हो, कोई अर्चन करता है, हरिनाम भी करते हैं और भक्ति के साधन करते हैं, किंतु भगवान की कथाओं में यदि आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ दिनों के बाद में वो सब छूट जाएगा। इसलिए भगवान की कथाओं के प्रति आदर हो। हनुमान जी जहां जहां पर रामायण की कथा होगी जरूर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे सुखदेव गोस्वामी जी भी जहां जहां हरी कथा होगी कोटि कोटि रूप धारण करके जाते हैं। हम तो सुनते हैं कहीं 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 पर हनुमान जी जहां पर भगवत कथा होती है वो कुष्ठ व्याधि का रूप धारण करके कुष्ठ रोगी जैसा, और वहां पर पहुंच करके सबसे पीछे बैठते हैं, किसी को पता ही नहीं लगने देते, देखते हैं इनके शरीर में कुष्ठ है, कोई निकट ही नहीं उनके पास, और बहुत दूर से हरी कथाओं को सुन करके फिर चले जाते, और यदि कोई जान लिया तो फिर मुश्किल हो जाता है। तस्मद मंगलम कभीरीडितम कल्मष आपहम, सारे प्रकार के कल्मष दूर हो जाते हैं भगवान के लिए। अजामिल ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं किया, और अपने पुत्र के लिए नारायण इधर आ नारायण 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 किया अपने पुत्र मरते समय में, और कैसे वो तर गया। इसलिए समस्त पापों को हरण करने वाला ये भगवान की कथाएं हैं। श्रवण मंगल, श्रवण करने से ही मंगल देती है हरि कथा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने 7 दिनों तक केवल हरि कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से, साधन करने का तो समय नहीं मिला, और क्या हुआ, गोलोक में गोपियों का भाव प्राप्त हुए, इतना ऊंचा स्थान। इसलिए श्रवण मंगल, हरि कथा में रुचि है तो बाकी सब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वैष्णव से भगवान की कथाएं सुने, फिर उसमें श्रद्धा होगी, रुचि होगी, धीरे 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 अनर्थ दूर हो जाएंगे, और फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव इत्यादि सब प्राप्त हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीमदातम, जितने प्रकार के कल्याण है वो सब कल्याण इसी से ही हो जाता है, आपकी कथाओं से। भूवि गृणन्ति जे भूवि जाते, ऐसे भगवान की कथाओं को जो जगत के कल्याण के लिए कथा कहते हैं, वो सबसे बड़े दानी हैं, उनके समान और कोई दानी नहीं है जो भगवान की कथाओं का दान करते हैं, वो भी निःशुल्क जो करते हैं। किसी प्रकार का ये नहीं जी हमको 1,00,000 रुपया चाहिए तब हम जाएंगे। बहुत से लोग आजकल पाठक हैं जो पहले चुप्ति कर लेते हैं, ऐसे भागवत से दूर रहना चाहिए, ऐसा भागवत मत कराओ जो इतना रुपया देना पड़ेगा तो हम जाएंगे, जो कि जीव के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। और कुछ जो बाम्य भाव वाली गोपियां हैं, इसका अर्थ दूसरा लगाती हैं, वो दूसरे रूप में इसका इसको गान कर रही, तब वो कथा मृतम, आपकी कथा मृत्यु है, मारने वाली विष है। कैसे विष है? तो हम लोग उपलब्धि कर रहे हैं, हमारे घर बार सबको छुड़ा दिया, रास्ते का फकीर बना दिया, हम न घर की रही न घाट की रही, तो कथा मृतम, ठीक है ना, इधर भी नहीं रखा उधर भी नहीं। कुछ ऐसे ही वैष्णव और गुरु बनने वाले हैं जो अपने भक्तों को इधर का भी नहीं रखते उधर का भी नहीं रखते, तो कहो कथा मृतम तप्त जीवन, जीवन को तप्त कर देती हैं आपकी कथाएं। यदि सुना तो स्त्री यदि सुनी तो पति और सबके प्रति संसार के प्रति आसक्ति दूर हुई मीरा की भांति, और छोड़ करके दोनों हाथ उठा करके वृंदावन में चली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे तप्त जीवन हो जाता है। कविरीतम, ये जो कथाओं का जो महात्म बतलाया गया है, जो ऐसा फल होता है वो सब झूठा, गोपियां कह रही उस बाम्य भाव वाली, सब झूठा। कबीर रीता, कवियों की कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। ये घोड़ा आसमान में उड़ रहा है, कभी लोग लिखेंगे, अरे घोड़े आसमान में उड़ते हैं, आकाश में फूल खिले हैं, आकाश में कभी पुष्प खिलता है, तो ये कोरी कल्पना है, ये लोगों ने लिख दिया है, लिख मारा है शास्त्रों में। क्यों? हम अनुभव करके देख रहे हैं, आज हमारा जीवन कितना दुखमय हो गया है। यदि दुख हो, यदि दूर हो जाता है इनकी कथाओं से, इनकी कथाएं तो हम कह रही हैं, और इतना विरह क्यों सता रहा है? आज हम दुखी क्यों हैं? कल मशाप, हम कथाओं से भी पाप दूर नहीं होते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ रहा है। श्रवण मंगल, बस उन कथाओं में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा कल्याण होगा, बस वही शब्द मात्र है, उसका कोई फल नहीं। कहाँ हमको भी मिल रहे, कहाँ रहे हो, हम दुख में उत्तप्त हो रही हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदात, जितने प्रकार के शुभ हैं वो सबको आततम नष्ट करने वाली, काटने वाली तुम्हारी कथाएं हैं ऐसी, कोई किसी को शुभ नहीं होगा। घर बार छोड़ करके किसी को पुत्र को ऐसा होगा, भगवान की कथा सुनेंगे तो सबको छोड़ छाड़ करके वृंदावन में पहुंच जाएगा, पक्षी की भांति इधर उधर कहीं से माधुकरी मांगेगा और हा कृष्ण रोएगा, घर वालों को भी रुलाएगा। ऐसी ही कथाएं हैं, भूल गृणंत ते भूल दारिना, उन लोगों से सावधान रहना जो तिलक लगा करके कंठी माला पहनते हैं और बगल में एक पोथी भागवत जिसका नाम है उसको दबा करके चलते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, हमारी कथा केवल सुनो, उनसे बचे रहो, उनकी कथा मत सुनो, नहीं तो तुम्हारा भी संसार ऐसे ही हो जाएगा जैसे आज हम दुखी हैं, बिल बिला रही हैं ऐसे। उसी तरह से इसके एक एक श्लोक के कितने कितने भाव, कितने कितनी गोपियां इस सब का वर्णन कर रही हैं। चलत जद ब्रजात चार जन पशु ननी न सुंदरम नाथते पदम शिड़तुर हे ना, हे कृष्ण, कृष्ण तो नहीं कहते हैं, नाथ कह रही हैं। चलत जत प्रजा, जब ब्रज से आप निकलते हो पशुओं को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में, नलिन सुंदरम नाथ ते पद, आपके सुंदर जो चरण कमल हैं, कोमल से कोमल, मधुर से मधुर, क्या उसमें पत्थर के टुकड़े, तीर, कांटे, कूश नहीं लगते? सिद्धि तीति न कली लतांग मन कांत गच्छति। हमारे मन में ऐसा होता है कि जरूर चुभते होंगे, गाय इधर उधर दौड़ती हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आप जाते हैं तो जरूर ये सब चुभते होंगे। आज हमारे मन में कली लतांग, कली माने विवाद उपस्थित हो जाता है, क्या गोपियों से और उनके मन से विवाद होता है। मन कहता है वो तीर चरने वाली जो गायें उनके पीछे पीछे जंगलों में जाते हैं तो वो चुभते क्या नहीं होंगे? नहीं चुभते होंगे, क्या उनकी आंखें नहीं है जो देख करके चलेंगे? इधर गोपियां कहते हैं ऐसे, आंख तो है किंतु गायें तो इधर उधर जाती हैं और उनके पीछे भागते हैं तो जरूर पत्थर के टुकड़े, कांट, कूश इत्यादि उनके पैरों में जरूर चुभते होंगे। तो चुभते हैं तो क्यों जाते हैं, मन कहता है। कहते हैं जैसे जब गाय नहीं जाती तो फिर ये क्यों जाते? इस तरह से विवाद लगता है मन में, बहुत सारा इसका वर्णन है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से मन ही मन में वो सोचते हैं जे कृष्ण को कितना कष्ट हो रहा है। इसी तरह से ये सभी श्लोक ऐसे ही हैं, समय भी साथ हो गया, एक श्लोक कह करके फिर बंद करेंगे। यत्ते सुजात चरणाम्बरुहम स्तने सुभीतासने प्रिय दधी मही कर्कशेषु ते नाम अटविस अटस तद व्यथते न किंचित कृपादिभि भ्रमत धीर्भव जादुषा यत्ते सुजात। इस प्रकार से गोपियां प्रार्थना करने लगी, जिन चरणों को, सुकोमल चरणों को हम लोग हृदय में धारण करना चाहती हैं, और वो भी डर के मारे, डरते डरते जो वो हमारे वस्तक्षल कठिन है, कृष्ण के चरण अत्यंत कोमल हैं, बड़ी विचार सोच करके हम उसको रखती हैं और उसी पैर से, कोमल चरणों से आप वन जंगल में चलते हैं, आपको कष्ट नहीं होता होगा, इसलिए आप जल्दी से, हाँ उन्हीं जैसे हो गए हो, ये भी ठीक, इसलिए जल्दी से प्रकट होइए, अब इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से रोने लगी और कृष्ण उनकी रोदन को सुनकर, इति गोप्य प्रगायंत्य प्रलपतांश चित्रधा रुरुदुस्वसरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभुहूर्त शौरी। शौरी मैंने सूर से आए, कठोर हृदय वाले लज्जित होते हुए, उनकी माला गले में है और उनकी पीताम्बर भी बड़े नम्र होकर के, कुछ लज्जित होते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, और आविर्भूत सौरी पीताम्बर दर्शक भी साक्षात मन 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 मथा वो उनके सामने उपस्थित हो गए। इस प्रकार से ये गोपियों का कृष्ण के विरह में एक मार्मिक प्रसंग है जो भागवत में लिखा गया है। अभी कृष्णदास एक कीर्तन कर दो तो तुम लोग का नित्य होगा।